السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ کیا ہے؟ روزے کے مسائل. ہمارے پاس اس موضوع پہ ایک پوری بک بھی الحمد للہ ریکارڈڈ ہے، لیکن پوری بک سننا ہر وقت ممکن نہیں ہوتا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہر سال جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کوئی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ جس کے بعد ہمیں کسی سے سوال پوچھنا پڑتا ہے. مثلاً اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس سے نہیں ٹوٹتا، روزہ کیوں رکھیں؟ پھر سم ٹائم بچے کوئی ایسا سوال پوچھ لیتے ہیں، باہر سے آتے ہیں کوئی بات سن کے، کہ مسلمس نان مسلم کا کوئی سوال اٹھ جاتا ہے. تو آج کے اس سیشن کا ہمارا گول کیا ہے کہ ہم ایک اسٹریچ میں روزے سے متعلق اٹھنے والے سوالات کا جواب لیں گے. آپ کہہ لیجئے کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ کمپیکٹ اور شارٹ سا سیشن ہمیں رمضان کے بارے میں سب کچھ بتائے گا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو بات ہم اس وقت سیکھیں گے یہ کسی کی کہی سنی بات نہیں، یہ ساری باتیں قرآن کی آیات سے اور اللہ کے نبی کی صحیح روایات سے ہے. اور یہ بک شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی تصنیف شدہ ہے، تو یہ ہم ان کے صدقہ جاریہ کے لیے بھی پڑھیں گے. آپ سب جانتے ہیں اس صدی کی بہت پیاری شخصیت تھے، کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا، آج بھی ان کے شاگرد موجود ہیں. عربی بک جو ہے وہ نبض فی الصیام، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت تصویر بنی ہوئی ہے فرنٹ پیج پہ. کھجور کا ایک درخت ہے اور جو کھجوریں پکنے پہ پھینکتے ہیں، نبض ینبض ہم جانتے ہیں، پھکنا پھینکنا، قرآن میں یہ عہد کو توڑنے کے لیے آتا ہے. تو بیسیکلی اس رمضان سے آپ کے میرے نصیب میں کیا کھجوریں آتی ہیں اس کو دیکھنا ہے. اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے روزے کے مسائل کے نام پر. تو ہم سب شروع کرتے ہیں. بک کا پیج کھول لیجئے، فرسٹ پیج ہے. میں کوشش کروں گی کہ ایک دفعہ آپ کو یہ بک پوری گو تھرو کراتی جاؤں، پیج کے ساتھ پیج پلٹتے جائیے، پھر اینڈ پہ انشاءاللہ اس کے ریکیپ کے اندر ہم کچھ چیزوں کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ چونکہ رائٹر جنہوں نے لکھا ہوتا ہے ان کے طرف اس چیز کو منسوب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ بندوں کا بھی نہیں ہوتا. تو میں اس موضوع کو شروع کروانے سے پہلے، نہ صرف یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی شیخ محمد بن صالح العثیمین ان کے، پھر جنہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا ان کے لیے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ فنار آرگنائزیشن کویت کی، جنہوں نے ہمیں اس لیکچر کے لیے نہ صرف یہ کہ انوائٹ کیا اور یہ بکس بھی اپنی طرف سے آپ سب کو پرووائڈ کی ہیں. ان سب کے لیے دعا کر کے شروع کرتی ہوں. اور سب سے بڑی بات ہے ہمارے پیارے انصار اللہ، اور اس سے بھی بڑی بات ہمارے وہ پیارے ساتھی جو یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں علم کی جستجو میں. ملنا دیکھنا یہ تو بعد کی باتیں ہوتی ہیں، پہلے تو ہم علم کو لیں گے. تو ان سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے سیشن کا صدقہ جاریہ بنائے. آج کا سیشن ان سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور انشاءاللہ بعد میں ایڈیٹنگ میں بھی ہم یہ باتوں کو رکھیں گے تاکہ جہاں بھی یہ بک چلے وہ لوگ بھی دعائیں کریں ان لوگوں کے لیے جو آج کی اس نیکی میں ہمارے معاون بنے. تو میں اپنے لیے بھی، جو مجھے یہاں لانے کا ذریعہ بنے، جس جس نے اس میں مدد کی، ایفرٹ کی، جو یہاں میرے سامنے بھی اس وقت موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اس چیز میں حصے دار بنا دے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کے مسائل. مقدمہ، مقدمہ قدمہ یقدم سے ہے، یعنی پہلی بات. کوئی بھی چیز پیش کرنے سے پہلے جو چیز ہے، یعنی کتاب کے شروع میں جو چیز ہوتی ہے، یعنی ایک دم مسائل پہ کیوں جائیں؟ مسئلے تو تھوڑے ہوتے ہیں، حل زیادہ ہیں. تو یہ محمد بن صالح کا جو اس کتاب شروع کرنے سے پہلے کا نوٹ تھا، یہ وہ ہے: الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. صوم اور اس کا حکم. ہم سب جانتے ہیں کہ عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں، صیام کا لفظ بھی ہے اور صوم کا بھی لفظ ہے. ٹھیک ہے؟ عام طور پہ جو صوم کا لفظ ہے یہ چپ کے روزے کو کہتے ہیں، جیسے سورت مریم میں حضرت مریم نے کہا کہ انی نظرت للرحمن صوما. ٹھیک ہے؟ لیکن صیام عام روزے کے لفظ کے لیے آتا ہے اور صوم خاص طور پہ ایک ایکشن ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے ایکویلنٹ بھی آتے ہیں. صوم اور اس کا حکم، صوم کی حالت میں لوگوں کے احوال، روزہ توڑنے والے امور اور دوسرے بعض فوائد کے بیان میں مختصر کلمات ہیں. کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں ذرا صوم کی تعریف کیا ہے. जब तक किसी चीज़ की डेफिनेशन ना पता हो, तारीफ ना पता हो, हम उस चीज़ से बेहतर तरीके से फ़ायदा नहीं ले सकते। तो सौम कहते हैं तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक। तुलु क्या है? सनराइज़। और तला सर उठाने को कहते हैं। क़ुरान में ये लफ्ज़ तल उहा के लफ्ज़ है, खुश जो होते हैं खजूरों के उसके लिए भी ये लफ्ज़ आता है। और गुरूब गरेबा से है, गुराब कव्वे को कहते हैं, काला होता है, डूबना, काला होना। यानी तुलुए आफ्ताब, और आफ्ताब तो आप जानते हैं सूरज, आफ्ताब कहते हैं ना उर्दू में, पूरी आबो ताब के साथ चल रहा है, तो वो आफ्ताब सूरज को इसलिए कहते हैं कि ये आबो ताब से चमक रहा होता है। तो सूरज निकलने से लेकर सूरज के डूबने तक रोज़ा तोड़ने वाले उमूर को छोड़कर अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत और बंदगी करना। ठीक है, तो ये तारीफ़ याद कर लीजिएगा रोज़े की, क्या है कि तुलुए आफ्ताब से गुरूबे आफ्ताब तक हर उस चीज़ से रुक जाना जिससे रोज़ा टूट जाता है। और सिर्फ रुकना नहीं बल्कि फिर अल्लाह की इबादत और बंदगी करना। ठीक है, ये तो है आम तारीफ़ रोज़े की। अब हम देखेंगे कि रमज़ान का रोज़ा, इसका क्या हुक्म है हमारी शरीयत में, क्या ये सुन्नत है, नफिल है, क्या है? तो याद रखिए कि ये फ़र्ज़ है। बड़ी मारूफ रिवायत हमारे सामने लिखी हुई है। इस्लाम के अजीम अरकान में से एक रुकन है। इसकी दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। मैं चाहूँगी कि आप आराब लगा लीजिए, नहीं तो फिर बाद में लगाइएगा। बुनियल इस्लामी अला खमसिन, शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस्सलाह व ईताइज़्ज़का व हज्जुल बैती व सौमु रमदान। यानी इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर है। कौन सी हैं ज़रा इस पे भी 1 2 3 लिख लीजिए अपने सामने। नंबर एक, गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूदे बरहक नहीं। ये है असल में पहली फाउंडेशन। और देखिए बुनियाद जो होती है ना, ये फाउंडेशन का लफ्ज़ जहाँ आए तो कमरे को सोच लीजिए, यानी अब इस हॉल की जो बुनियादें हैं अगर उसको निकाल दें, गिरा दें, तो सब कुछ गिर जाएगा ना। तो बुनियाद वो चीज़ है कि जिसमें से किसी एक चीज़ के हटने या हटाने से दीन इस्लाम की इमारत गिर जाएगी, यानी लाजिम है। ठीक है, तो पहली चीज़, सच्चा माबूद सिर्फ़ अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के माँ सिवा किसी का ख्याल ना आए। नंबर टू लिखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये भी बड़ी अहम बात है। इन दो के अलावा बाकी चीज़ों को इधर उधर कर दीजिए, जिधर मर्जी ले जाइए, जब तक ये दो नहीं होंगी इस्लाम का कमरा नहीं बनेगा। नमाज कायम करना तीसरी चीज़, नंबर थ्री लिखिए, रमज़ान के रोज़े रखना फोर, और बैतुल्ला यानी बैतुल हराम का हज करना पाँच। तो अब देखिए इस तरतीब में रोज़े की जगह किधर है? गवाही देना अल्लाह के रसूल की दो, नमाज तीन, तो रोज़े की चार। आप कह सकते हैं कि इस्लाम की आउट ऑफ फाइव फाउंडेशंस में से फोर्थ फाउंडेशन इज़ रोज़ा। यहाँ चंद सेकंड के लिए रुकूँ और आपको सोचने का मौका दूँ। फिर जो लोग रोज़ा रखते ही नहीं, जिनको ख्याल ही नहीं, जो गर्मी का नाम लेकर, इम्तिहानों का नाम लेकर और छोटी छोटी बीमारियों का नाम लेकर इसको नहीं कर पाते, तो फिर उनको आप क्या कहेंगे? तो लिहाजा इसके लिए इंसान को बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होना चाहिए। तो नियत कर लीजिए कि ऐसे तमाम साथियों को इंशाल्लाह इस साल हमने इस चीज़ की रग़बत दिलानी है कि वो रोज़े रखें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। रोज़े में लोगों के अहवाल और इनकी किस्में, इस टॉपिक के अंडर क्या आएगा, यानी किस पे रोज़ा फ़र्ज़ है, किस पे रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। हम एक सवाल की सूरत में इस टॉपिक को लिखते हैं, किन लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ है और किन पर नहीं, और बच्चों पर रोज़ा कब फ़र्ज़ होता है। बड़ा अहम टॉपिक है, लोग सवाल करते हैं बहुत सारे। और कौन अपने इस रोज़ा जो छोड़ा है उसकी कज़ा लायक करेगा या कौन फ़दिया देगा, ये चंद छोटे छोटे टॉपिक इस टॉपिक के अंदर आते हैं। तो ज़रा से इसको देखते हैं। नंबर एक, सौम यानी रोज़ा हर बालिगो आकिल मुस्तती, मुस्तती का नीचे लिखिए आसान करके, जो इस्तेतात रखता हो। कुरान पाक में भी यही आता है ना, इस्तेतात। ठीक है, और इस्तेता के लफ्ज़ को अगर मैं और खोलने बैठ जाऊँ तो तोए वो आइन तोवन का लफ्ज़ है। तोवन व करहन कुरान में दोनों लफ्ज़ आते हैं, खुशी से, खुशी के मानों में आता है। और तत्तवु कहते हैं नफिल इबादत को। मुश्किल है तो माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं आसान करने के लिए बोल रही हूँ। ना लिख सकें तो कोई हर्ज की बात नहीं, बस इतना समझ लें मुस्तती वो शख्स है जो खुशी के साथ यानी अपने हालात के मुताबिक उसकी ताकत रखता हो। ठीक है, नफिल इबादत को भी अरबी में तत्तवु कहते हैं। ठीक है, और हज के लिए भी ये लफ्ज़ आया और रोज़े के लिए भी यही है, फमन ततव्वा। ठीक है, मतव्वा कहते हैं वॉलंटियर को अरबी में, अक्सर आप हरम में जाएं तो आपको मतव्वे का लफ्ज़ सुनने को मिलेगा। चलिए, तो रोज़ा किस पे फ़र्ज़ है? नंबर एक, बालिग प्यूबर्टी की एज है। बलूगत के दो असरात हैं, लड़कियों का तो सबको ही पता है, बीमारी के दिन शुरू हो जाते हैं। लड़कों की बलूगत चंद निशानियों से दिखती है, जो चेहरे और जिस्म और आवाज़ में तब्दीली और कुछ ख्वाबों की सूरत में आती है। ठीक है, आकिल, आकिल से मुराद ये नहीं कि अक्लमंद, आप कहेंगे मेरा तो कोई बच्चा ही अक्लमंद नहीं है, नहीं, आकिल से मुराद के जो बुरे भले का फ़र्क कर सके। कुछ बेचारे मजनून होते हैं, सोच समझ नहीं सकते, तो मुराद ये कि जो अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल कर सके यानी जिसमें समझ हो। और तीसरी बात मुस्तती, और चौथी मुस्तती जो इस्तेआत रखता है, मुकीम यानी आकिल मुस्तती दोनों इकट्ठा एक ही लफ्ज़ है, कि हर वो शख्स जिसमें सोच समझ की ताकत है और वो ताकत भी रखता हो। और चौथी किस्म मुकीम, मुकीम किसको कहते हैं? गैर मुसाफिर को। इन पर वाजिब है, मैं दोहरा देती हूँ जुमला, जो लोग बग़ैर बुक के लिख रहे हैं वो भी सुन लें इस बात को, कि पहली बात है रोज़ा बालिग पे, आकिल पे जो ताकत रखता हो, और मुकीम यानी जो मुसाफिर ना, इस पे फ़र्ज़ है। वाजिब का मतलब समझ गए? वजबा, वजबा खाने को भी कहते हैं ना अरब में, वाजिब यानी लाजिम है। ठीक है, नंबर टू देखिए, काफिर शख्स रोज़ा नहीं रखेगा, और अगर वो मुस्लिम हो गया तो इस पर गुजरे हुए रोज़ों की कज़ा करनी वाजिब नहीं है। बड़ी प्यारी बात है, यानी बाज़ लोग आज के दौर में अक्सर ये जुमला बोलते हैं, मेरी नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो भी रखती हैं, कोई कहती है बच्चों के दोस्त हैं। देखिए, आदत डालने के लिए या तकवा लाना है वो और बात है, लेकिन आम रोज़े का उसको अजर या सवाब ये कुछ सोचना ये नहीं है। ठीक है, हाँ, जिस दिन मुसलमान होगा उसके बाद अगर नहीं रखेगा तो जवाबदेही है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, छोटे बच्चे पर रोज़ा वाजिब नहीं है, लेकिन आदत डालने के लिए इसे रोज़ा रखने का हुक्म दिया जाएगा। ये बड़ी प्यारी बात है, सहाबियात का ये अमल हमें अहादीस से मिलता है। छोटे छोटे बच्चों को रोज़ा रखवाती थी और कहती हैं कि हम उनको मस्जिद में लाते और जब वो खाना मांगते तो हम उनको खिलौना देते। इसी तरह हज़रत उमर का एक बड़ा प्यारा वाक्य आता है कि किसी शराबी को रमज़ान में शराब पीते देखा तो दुर्रे लगवाए और कहा, हमारा तो बच्चा बच्चा रोज़े से है और तू रमज़ान में शराब पीता है इस वक्त। तो किस्सा मुख्तसर यह है कि बच्चों को अब रखवाइए, वाजिब नहीं। अब आपके कब, बस एक जुमला लिख लीजिए कि जब बच्चा रोज़ा रखने का आदी हो। शुरू में रखाइए, बीच में नहीं रख सकते, आधे दिन बाद तुड़वा दें। हमारे दौर में इसको कहते थे चिड़ी रोज़ा, कच्चा रोज़ा, बच्चे मुंह में रखते हैं। फिर अक्सर हम बच्चों को कहते थे कि आप दो रोज़े रखो दिन में, हम एक रखते हैं, चलो बेटा आपने सुबह रखा। इसके लिए एक माओ को टिप्स देना चाहूँगी, फजर पे ज़रूर उठाइए, यानी सहरी के लिए जब आप उठते हैं ना तो 6-7 साल के बच्चों को उठाइए साथ। कई लोग ये सोचते हैं कि सो रहे हैं, स्कूल जाना है, नहीं, देखिए ये लाशऊर के अंदर ऐसे चीज़ें बच जाती हैं कि आपको आज भी आंखें बंद करें तो अपने बचपन की वो सहरियाँ याद होंगी, जिस वक्त आप उठ के कहते थे अच्छा जी हमसे चोरी चोरी खाना खा रहे हैं, हमें सुला कर आप लोग खाना खाते हैं। वो चीज़ आज भी दिल में मौजूद है ना, तो आप अपने बच्चों को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें, 4-5 साल के बच्चे को भी सहरी पे उठा दीजिए, खिला दें। नाश्ता तो करवाना ही है ना, थोड़ी देर बाद स्कूल जाते हुए सहरी खिला दीजिए, चले जाएं। फिर जब स्कूल से वापस आएं तो उनको खिलाइए लंच और साथ कह दीजिए ये अब आपकी पहली इफ्तारी है, और साथ ही आपकी सहरी बन जाएगी। थोड़ी देर बाद कुछ और खिला करके ये अब आपकी दूसरी सहरी है, और फिर शाम को आपके साथ खाएं। बाज़ दफ़ा खाना बनता है तो बच्चे पहले ही खा रहे होते हैं, कि नहीं अब आप मगरिब पे हमारे साथ खाएं। तो दिन में जो भी 2 दफ़ा आप खाना उनको देते हैं उसको सहरी इफ्तारियों में बदल लीजिए, इंशाल्लाह इससे रग़बत आएगी बच्चों को बाद में रखने की। चौथा पॉइंट नोट कीजिएगा, नेक्स्ट पेज है, मजनून यानी पागल अगरचे बड़ी उम्र का ही क्यों ना हो। इस पर ना तो सौम फ़र्ज़ है, यानी जो मजनू है जिस बेचारे की समझ ही नहीं, ना तो सौम फ़र्ज़ है और ना ही इसकी तरफ से किसी को खाना खिलाया जाएगा। यही हुक्म इस कम अकल का है जो बहुत सारी चीज़ों में तमीज़ नहीं कर पाता। बहुत प्यारी बात है, आज आपको फ़र्स्ट टाइम शायद ये मसला समझ आया होगा कि जो पागल है मजने वो मुकल्लफ़ ही नहीं, जब फ़र्ज़ नहीं तो कज़ा नहीं है, ठीक है, तो फ़र्ज़ भी नहीं, बड़ी उम्र का भी हो यानी बालिग हो चुका है लेकिन मजनून है। देखिए वैसे देखा जाए तो ये कितनी आसानी की बात है ना, अल्लाह ना करे किसी का बच्चा या कोई खुद ऐसा हो, लेकिन अगर कोई है तो देखिए कि उसका तो हिसाब ही आसान है। तो बहरहाल आप इसकी तरफ से कुछ नहीं खिलाएंगे। फिर पांचवी चीज़ दायमी सबब, दायमी लिखिए हमेशगी का, दवाम जिससे होता है ना, यानी वो बीमारी या वो सबब जो दूर कभी नहीं अब होगा। मसलन किसी को शुगर हो जाती है और अब ठीक नहीं होनी, या कोई हार्ट पेशेंट है, किडनी प्रॉब्लम है, यानी ऐसा प्रॉब्लम जिस पर डॉक्टर्स कहते हैं कि बीमारी यानी ऐसी है, ये जुमला नोट कीजिएगा, बीमारी ऐसी है कि जिसमें रोज़ा रखने से नंबर एक बीमारी के बढ़ने और नंबर दो जान के जाने का खतरा है, ठीक है, और ये ठीक भी नहीं होगी कभी, और इसी दायमी सबब में बुढ़ा भी है। तो दायमी सबब की वजह से जो शख्स रोज़ा रखने से आजिज़ हो, जैसे बहुत बूढ़ा शख्स या ऐसा मरीज़ जिसकी शिफा याबी की उम्मीद ना हो, ऐसे लोगों की तरफ से हर दिन एक मिस्कीन को खाना खिलाया जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लिया आपने, बूढ़े या ऐसे बीमार जो ठीक नहीं होंगे, अब बस इनकी तरफ से एक मिस्कीन का खाना है, दैट्स इट, मामला साफ हो गया। नंबर सिक्स, ऐसा मरीज़ जिसे इत्तफाकन बीमारी ने पकड़ लिया हो, वो शिफा याबी का मुंतज़िर हो, तो ऐसा शख्स रोज़ा तोड़ सकता है और सेहत याबी के बाद रोज़े की कज़ा करेगा। फ़र्क समझ आ गया आपको? कभी कभी बुखार होता है, कभी कभी कोई ऐसी तकलीफ़ पेट में हो गई कि रोज़ा नहीं रख सके, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? कज़ा करेंगे। पहली सूरत में क्या था? कफ़ारा था, इस सूरत में कज़ा है। इसका फ़र्क नोट करिएगा आप लोग, ये बहुत अहम सवाल है। नंबर सेवन, हामिला और दूध पिलाने वाली औरत, हामिला को क्या कहते हैं? प्रेग्नेंट, और दूध पिलाने वाली औरत नर्सिंग मदर, यानी जिसकी गोद में बच्चा है और वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ऐसी औरत के लिए क्या हुक्म है? ये भी वो औरतें ज़रूर सुने, और अगर आपके फैमिली में इधर उधर हैं तो उनको ये हिस्सा सुनवा दीजिए ताकि मसला सही जाए। अधूरी बात सुनकर आगे मत कीजिए, इससे इल्म पूरा नहीं जाएगा उनके पास, और उससे इंशाल्लाह फिर वो फ़ायदा भी उठाएंगी जब आप उनको ठीक तरीके से ये सारी चीज़ों में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? हामिला और दूध पिलाने वाली औरत, इसका क्या हुक्म है? अगर हामिल या दूध पिलाने की वजह से रोज़ा इस पर शाक गुज़रता हो, शाक समझ रहे ना, देखिए शक कहते हैं फाड़ने को, यानी वही बात हो गई कि बच्चे को न ख़तरा है या माँ को ख़तरा है, या बच्चे की बीमारी और कमज़ोरी का अंदेशा हो, तो ऐसी औरतें रोज़ा तोड़ सकती हैं। तोड़ सकती इस लफ्ज़ को भी समझ लीजिए, यानी या तो रखा ही ना, या रखा था लेकिन लगा तबीयत ख़राब होने लगी तो खोल दीजिए, कोई गुनाह की बात नहीं होगी। मामला आसान हो जाने और अंदेशा जाने के बाद रोज़े की कज़ा करेंगी, ठीक है। तो हामिला और नर्सिंग मदर रोज़े की कज़ा करेंगी। बाज़ लोग कहते हैं जी हमने वो प्रेगनेंसी के रोज़ों का कफ़ारा तो दे दिया हुआ है, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा लेकिन कज़ा करना पड़ेगा, और इसको बाद वाले दिनों में कर सकते हैं। नंबर एट पे आ जाइए, ये ज़रा सा एक समझने वाला नुक्ता है, इसको गौर से सुनिएगा और देखिएगा इसको। ऐसा शख्स जो किसी मासूम के डूबने या आग में जलने से बचाने के लिए रोज़ा तोड़ने पर मजबूर हो, और ऐसा शख्स रोज़े की कज़ा करेगा। अब ये कैसे होगा? ज़रा सा इसको समझिए, यहाँ से आपको दीन इस्लाम की खूबसूरती भी दिखेगी। पानी में कोई गया, डूबने लगा, या आग लगी और कोई इसमें जलने लगा, अब दूसरा शख्स रोज़े से था, वो ये दोनों मंजर देख रहा था, अब वो ऐसा रोज़ा तोड़ सकता है क्योंकि इसमें एफर्ट है, ज़ाहरी बात है, पानी में जाएगा उसको बचाने के लिए, हो सकता है पानी मुंह में आए, एफर्ट है, खुद एनर्जी नहीं थी। अब एनर्जी नहीं है तो क्या करें? अपने आप को तैयार करेगा तो रोज़ा खोल सकता है, लेकिन उस रोज़े को बाद में इंशाल्लाह पूरा करेगा। नंबर नौ, हाइजा और बच्चा जनने वाली औरत रोज़ा नहीं रखेगी और फौत शुदा रोज़े की कज़ा करेगी। क्या पता चला कैसे होगा? हाइजा कौन होती है? पीरियड्स वाली औरत, बच्ची, और कोई भी उम्र की हो सकती है, और बच्चा पैदा करने वाली औरत यानी जिसको नफास वाली औरत कहते हैं, मतलब बच्चे की डिलीवरी के बाद वाले जो वक्त है उसके अंदर आएगी, तो ऐसी औरत जो है फिर वो रोज़े की कज़ा करेगी। अब आप लफ्ज़ कज़ा और कफ़ारे दोनों का फ़र्क ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से इंजॉय कर सकें। फिर नंबर 10 है, मुसाफिर अगर चाहे तो रोज़ा रखे और चाहे तो ना रखे, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके मेरे लिए फ़ायदे की हैं। अब अगला टॉपिक क्या है? रोज़ा तोड़ने वाले उमूर, इस पे तो आप ज़रा टेक छोड़ के बैठ जाए क्योंकि ये बहुत अहम है। अक्सर लोग शक में ही बेचारे रहते हैं और ये सोच लेते हैं कि जी बाद में क्या होगा और दिस एंड दैट। तो उसका जवाब लिखिए, रोज़ा तोड़ने वाले उमूर कौन से हैं? नंबर एक, भूल कर या नादानिस्ता यानी अनजाने में कुछ खा पी लेने से रोज़ा नहीं टूटता। अल्लाह ताला का फरमान है, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। सूरत बकरा की आखिरी आयत है, 286 नंबर है। क्या तर्जमा है? ऐ हमारे रब, अगर हम भूल गए हों या ख़ता की हो तो हमें ना पकड़ना। ठीक है जी, तो इससे आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि रोज़ा जब आप रखते हैं तो उसके बाद अगर कुछ ना जानने में हो गया तो अल्लाह माफ़ कर देगा। कितनी मज़े की बात है। मुझे तो यहाँ हमेशा अपना एक वाक्य याद आ जाता है, अगर मैं आपको रिलैक्स करने के लिए सुना दूँ। साइंस मेरा सब्जेक्ट था और शदीद गर्मियों के दिन थे और हमारे प्रैक्टिकल्स थे रमज़ान के दिनों में। लैब में काम करना था, केमिस्ट्री का कोई ऐसा प्रैक्टिकल चल रहा था। शदीद गर्मी थी, अल्लाह नोज़ दी बेस्ट क्या हुआ उस वक़्त के उन्होंने इस तरह क्यों किया। तो जब हम लोग अपने लेबॉर्ट्री में काम कर रहे होते थे तो बीच में पानी पिलाने वाले लोग फिर रहे होते थे। मैंने शायद 2 या 3 दफ़ा भर भर के ग्लास पिए पानी के। जब आखिरी दफ़ा मैंने पिया एंड पे तो मुझे पता चला मेरा रोज़ा था, लेकिन रोज़ा कोई नहीं टूटा, अल्लाह ने पिला भी दिया। ये अल्लाह खिलाता और अल्लाह पिलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सूरह नहल 106, मन कफर बिल्लाहि मिन बादी ईमानी ही इल्ला मन उक्रिह व कल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान। जो शख्स अपने ईमान के बाद अल्लाह से कुफर करे बजुज इसके कि जिस पर जबर किया जाए और इसका दिल ईमान पर बरकरार हो। तीसरा रेफरेंस सूरत अहज़ाब आयत 5 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलैसा अलैकुम जुनाहुन फीमा अख्तातुम बिही वलाकी मा तअम्मदत कुलूबुकुम। क्या तर्जमा है इसका? और नेक्स्ट पेज देखिएगा, और तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं, किस बात में? जो तुमसे भूल चूक हो जाए, और अलबत्ता गुनाह वो है जिसका तुम दिल से इरादा करो। ठीक है, तो फिर क्या बात पता चली? कि अगर रोज़ेदार ने भूल कर खा लिया या फिर पी लिया हो तो इसका रोज़ा फासिद नहीं होगा, क्योंकि इसने ऐसा भूल कर किया है। और अगर ये समझ कर कुछ खाया और पिया हो कि ग़ुरूब आफ्ताब हो गया या अभी तुलू आफ्ताब नहीं हुआ तो इसका रोज़ा फासिद नहीं होगा, क्योंकि इसने ऐसा जहालत की बुनियाद पर किया है। बात समझ गए आप भी? अल्लाह के हुक्म से ये बात वाज़े है। देखिए मैं दोहरा देती हूँ, भूल कर खा लिया या पी लिया तो रोज़ा फासिद नहीं है। ठीक है, भूल कर। फिर अगर कभी ये सोचा कि सूरज डूब गया यानी इफ्तारी का टाइम हो गया तो खा लिया, बाद में पता चला कि नहीं गलत था, भूल के खा लिया यानी भूल हुई, तो इंशाल्लाह रोज़ा ठीक होगा। हाँ, जानबूझ के करेंगे तो गुनाह होगा। और इसी तरह तुलुए फजर अभी हुआ नहीं और खाते रह गए और बाद में पता चला कि हो गया था, तो फिर ये रोज़ा इस बुनियाद पे होगा। अगली किस्म देखिए, और अगर कुल्ली करते हुए बिला कसद और इरादा पानी रोज़ेदार के हलक में दाखिल हो जाए तो इसका रोज़ा फासिद नहीं होगा, और अगर नींद में इख्तलाम हो जाए तो भी रोज़ा फासिद नहीं होगा, क्योंकि ऐसी हालत में ऐसा शख्स बाख्तियार नहीं होता। पहली चीज़ कुल्ली, हम सभी जानते हैं वजू करते हुए भी कुल्ली करते हैं, इरादा नहीं था। अब ये नहीं कि जान के ज़रूर हलक तक लेकर जा रहे हैं कि अंदर पानी जाए, ठीक है, तो नहीं टूटेगा, खुद से चला गया, इट्स ओके। फिर नींद में इख्तलाम, जब रोज़ेदार है, अब मर्द के साथ ये कैफियत होती है, दिन के वक्त सो रहा था, इख्तलाम हो गया, अब उसके इख्तियार में नहीं है, बस वो उठने पे गुसल करके अपने रोज़े को कायम करेगा और नमाज भी पढ़ेगा। ठीक है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। ये भी बहुत अहम सवाल है, कई दफ़ा शर्म की वजह से बाज़ लड़के मर्द जो भी बालिग होते हैं वो ये सवाल नहीं पूछते, तो ये भी यहाँ आपको मिल गया जवाब। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगला टॉपिक क्या है कि रोज़ा तोड़ने वाले उमूर 8 हैं जो मंदरजा ज़ैल है, यानी 8 चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। ये बड़ा अहम टॉपिक है जी, इसको नोट कीजिए। नंबर एक, जिमा। जिमा जिसकी तफसील ये है, अगर कोई शख्स फ़र्ज़ रोज़े की हालत में या रमज़ान के महीने में जिमा कर ले तो इस पर रोज़े की कज़ा के साथ साथ कफ़ारा मुगल्लिज़ा, इसको आराम से सही कीजिए, मुगल्लिज़ा, गलीस का लफ्ज़ उर्दू में बोलते हैं ना, गाढ़ा, थिक। और वो क्या है? एक गर्दन आज़ाद करना, यानी फर्स्ट चॉइस क्या है कि कोई एक गुलाम आज़ाद करे, और अगर आज़ाद ना कर सके, गुलाम है ही नहीं है या पैसे नहीं है गुलाम को आज़ाद करने के, तो 2 महीने मुसलसल रोज़ा रखना, सुबहान अल्लाह। और मुसलसल क्या है कि अगर एक भी छूटा तो बाकी फिर दोबारा कंटिन्यू करने पड़ेंगे। और अगर ये भी ना कर सके तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना, अल्लाह अकबर कबीरा, बहुत बड़ा कफ़ारा है। अब आप देखिए कि यहाँ टॉपिक से ही पता चल रहा है, शौहर बीवी का ताल्लुक जो रमज़ान में रोज़े की हालत में हराम हो जाता है जबकि आम दिनों में वो हलाल होता है। जिमा ख़ास तौर पे वो ख़ास अमल जिसके बाद फिर औलाद पैदा होने की उम्मीद होती है, ठीक है। तो जिमा या उसके लवाजमात से रोज़े की हालत में रुकना फ़र्ज़ है और कुरान ने भी इसकी बात कर दी। अब कोई कर ले, हो गया किसी से फ़र्ज़ रोज़े की हालत में या रमज़ान के महीना था और कोई भी ऐसी कैफियत थी, तो फिर उसकी कज़ा, ये जो मुग़ल्लिज़ है यानी बहुत सख्त कफ़ारा है, ये थोड़ा नहीं है कि आप उस रोज़े की कज़ा करें। क्यों? देखिए रोज़े का मकसद भी तो यही है ना, लअल्लकुम तत्तकून। तो सेल्फ़ कंट्रोल रोज़ा सिखाता है और इस्लाम जितनी प्यारी ट्रेनिंग करता है इतनी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो इनमें से फिर एक है पहली चॉइस, नहीं तो दूसरी, और ना हो तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना। देखिए इसमें और नहीं है, अगर है, इफ़ नॉट देन देन, पहली ना हो तो दूसरी पे आएंगे, ये नहीं कि तीनों में कोई एक चॉइस ले लें। दूसरी है जी बेदारी की हालत में मनी खारिज होना, ख्वा इस्तिमना और मुबाशरत के ज़रिए हो या बोसा देने, बीवी को ज़म करने या इसके अलावा दूसरी वजह हो। यानी बेदारी से मरा सो नहीं रहा था, एक शौहर बीवी हैं। अब आप देखिए कि हालात सबके फ़र्क हो सकते हैं, नई नई शादी हुई, कुछ भी हुआ, शौहर बीवी के पास हुआ, बैठ सकते हैं एक दूसरे से, फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हर वो चीज़ जो जिनसी जज्बों को भारे उससे मना किया। वो रिवायत आपको याद होगी कि एक बूढ़े ने आकर अल्लाह के नबी से पूछा कि क्या मैं रोज़े की हालत में अपनी बीवी को बोसा दे सकता हूँ, यानी किस कर सकता हूँ? आपने कहा कर सकते हो। जवान ने पूछा तो मना किया। दूसरे शख्स ने पूछा ये फ़र्क क्यों है, तो आपने बता दिया कि बूढ़े को काबू होगा अपने जज्बात पर, जवान को नहीं होगा। अव्वल तो ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए जिससे ख़तरा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद ही कहा कि तिल्का हुदूदुल्लाह, हदों के करीब जाने वाले को ख़तरा होता है कि वो दूसरी तरफ ना कूद जाए, ठीक है। इस तरह ज़म करने से मुराद हक देना, गले मिलना। तो फिर अगर ऐसी कैफियत की, मतलब फिर वो इंटरकोर्स नहीं हुआ लेकिन डिस्चार्ज हो गया मर्द का, तो उसका वो रोज़ा टूट जाएगा, यानी उसको फिर इस रोज़े को दोबारा करना पड़ेगा। जो ऊपर से साथ ही ना वो पूरा फेल हो जाए, यानी बाकायदा जो भी इसमें लिखा है लेकिन उससे कम दर्जा है, तो बहरहाल रोज़ा इसका टूटेगा। और उसके बाद तीसरा देखिए, खाना पीना ख्वाह नफ़ा बख्श हो या नुकसान दे, जैसे सिगरेट नोशी करना, यानी कोई खा ले पी ले तो रोज़ा टूट जाता है, फ़ायदा होगा ना इससे नफ़े वाली। और बाज़ लोग स्मोकर्स होते हैं जो आदी हैं, तो वो सिगरेट अगर पी लेंगे तो रोज़ा उससे भी टूट जाएगा। चौथी चीज़ ग़िज़ाई इंजेक्शन लगवाना, जिसके इस्तेमाल के बाद खाने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती, और इससे रोज़ा इसलिए टूट जाता है क्योंकि ये भी खाने और पीने की एक शक्ल है। हाँ, लेकिन वो इंजेक्शन जिसके ज़रिए जिस्म को ग़िज़ा फ़राहम नहीं होती, इससे रोज़ा नहीं टूटता। ख्वाह इसे गोश्त और पट्ठों में लगाया जाए, यानी वेंस में लगे या फिर रग में लगे या फिर गोश्त में मसल्स में लगे या नस में, इसी तरह इसकी लज्जत हलक में महसूस हो या ना हो। तो बड़ा अहम सवाल लोग जो अक्सर करते हैं कि इंजेक्शन लगवाने से टूटता है कि नहीं, तो आप समझ लीजिए कि वो रोज़ा जिसको आपकी मेरी ज़ुबान में ड्रिप लगना कहते हैं, ताकत का इंजेक्शन हो सकता है, ड्रिप होती है क्योंकि इससे जिस्म को एनर्जी मिल जाती है, तो इससे रोज़ा टूटेगा। पांचवा क्या है कि खून पहुंचाने वाले इंजेक्शंस, जैसे कि रोज़ेदार को खून आने लगे और इसको खून देने के लिए इंजेक्शन लगाया जाए, इससे भी टूटेगा। यहाँ एक साइड पॉइंट नोट कर लीजिए कि आम इंजेक्शन कोई दवाई का या किसी बीमारी से बचने का, उससे रोज़ा नहीं टूटता। छठा है हिजामत, यानी सींगी लगवाना, इसके ज़रिए फासद खून निकालना, जिसको आज के दौर में हम हिजामा कहते हैं। और अगर खून खुद ही निकल जाए, जैसे कि नकसीर फूटना या दान निकलना वगैरह वगैरह, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता क्योंकि ना तो ये हिजामा है, हिजामत, और ना उसके मानों में। तो ख़ुद से खून निकल आए, दान टूट गया, नकसीर फूट गई, छुरी का कट लग गया, आप फ्रूट चाट बना रहे थे और छुरी उंगली पे चली गई, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। फिर इसी तरह से आप देखिए कसदन क़य करना, और अगर बिला कसद और इरादा क़य आ जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। ये बहुत सवाल लोग करते हैं, यानी वॉमिटिंग से रोज़ा टूटता है नहीं, तो जवाब यह कि इरादे से की तो टूट जाएगा, बिला इरादा हुई तो कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या है रोज़े के कुछ और मसाइल, ये रैंडम है, इसको भी ज़रूर समझिएगा। जुनाबत की हालत में रोज़े की नियत करना और तुलुए फजर के बाद गुसल करना जायज़ है। देखिए कभी कभी ऐसे हालात हो सकते हैं कि गुसल वाजिब हो लेकिन रोज़े के ख़त्म होने का वक्त करीब हो। अब अगर शौहर या बीवी उस वक्त में गुस्ल में चले जाएंगे तो बाद में खाने का वक्त ख़त्म हो चुका होगा, तो पहले खा लीजिए, नियत कर लीजिए, और फजर की नमाज़ से पहले पहले गुस्ल कर लें तो जायज़ है। रमज़ान में फजर से पहले हैज़ व निफास से पाक हो जाने वाली औरत पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। यानी एक औरत है, पीरियड से थी, ख़त्म होने के दिन थे, हैज़ के भी और निफास दोनों एक ही हुक्म है, तो सुबह उठ के देखा पाक हो चुकी है, रोज़ा रख ले और बाद में गुसल कर ले, अगरचे तुलुए फजर के बाद गुसल करे, क्योंकि रोज़ा नहीं छोड़ना। बाज़ लोग लटका लेते हैं, नहीं अभी नहीं। और एक चीज़ जो हमारे कल्चर में है ना, कि 12 बजे के बाद पीरियड्स आए तो रोज़ा नहीं टूटता और दिस एंड दैट, ये सिर्फ हमारी अपनी ये बनाई हुई एक खुद साख्ता बात है, शरीयत पे ऐसी कोई बात नहीं है। इवन आप मगरिब से चंद मिनट पहले चेक करें और ब्लीडिंग शुरू हो चुकी हो तो भी टूट जाता है। यानी दोनों इंतहा है, फजर से पहले ख़त्म हो जाए तो रोज़ा रखना पड़ेगा, मगरिब से पहले शुरू हो जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। अजर तो अल्लाह देगा उस रोज़े का, लेकिन उसकी कज़ा बाद में होगी। फिर इसी तरह रोज़ादार दाढ़ के दांत या इसके अलावा दूसरे दांत उखाड़ सकता है, ज़ख़म का इलाज कर सकता है और आँख और कान में दवाई यानी ड्रॉप्स भी डाल सकता है। इससे रोज़ा नहीं टूटता, अगरचे ड्रॉप की लज्जत हलक में महसूस क्यों ना हो। बात वाज़े हो गई, अल्लाह के हुक्म से दाढ़ का दांत या उसके अलावा दूसरे के दांत उखाड़ से, यानी एक डॉक्टर है, अब वो रोज़े से है, ठीक है, अब वो क्या करेगा ज़ख्मों के इलाज, यानी मीन डॉक्टर अपनी पूरी प्रैक्टिस कर सकता है, और अगर अपना भी दांत टूट रहा है और मजबूरी है, यानी उससे कुछ नहीं था। यानी आप ये कह लीजिए कि अगर दांत टूटा या दांत का इलाज करवाना है, आपका अपॉइंटमेंट आ गया रमज़ान में, तो भी हो सकता है इंशाल्लाह, और आँख कान में ड्रॉप्स भी डाले जा सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। फिर सुबह और शाम को मिसवाक करना, बल्कि रोज़ेदार के हक़ में सुबह या शाम को मिसवाक करना सुन्नत है। ये जो हमारे कल्चर में ना कि हज़रत मूसा ने मिसवाक कर ली थी इसलिए उनका टाइम बढ़ गया था 30 से 40, ये भी हमारी खुद साख्ता ही बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है अल्लाह के हुक्म से। फिर आगे देखिए, गर्मी और प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए पानी या एसी के ज़रिए ठंडक हासिल करना जायज़ है। ये भी बहुत अहम बात है, यानी ठंडक ले सकते हैं, उससे रोज़ा नहीं टूटता। देखिए जब लोग एक्सट्रीम पे आते हैं ना, तो सम टाइम फिर ऐसे मसले खड़े करते हैं, नहीं वो साइंस जो पढ़ ली हमने, नहीं ठंडक में जाएंगे फिर वेपोरेशन होती है, सांस के साथ पानी मुंह में चला जाएगा, और बारिश में आ जाएं और ये है और वो है, दिस एंड दैट, ये जो भी करते जाएंगे ना, तो उसका नुकसान फिर ऐसा होता है कि दिन सख्त हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट थिंग क्या है, ज़हनी तनाव यानी टेंशन, इसको लिखिए प्यार से, बड़ी आम है आज के दौर में, है। और सांस की तंगी, जिसको आप कहते हैं कि सांस रुकता है, या जैसे एस्थमा इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, इसको कम करने के लिए मुंह में स्प्रे का इस्तेमाल करना भी रोज़ेदार के लिए जायज़ है, क्योंकि हवा भी तो साथ जाती है ना अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके बाद देखिए, होंठ सूख जाने के बाद रोज़ेदार इन्हें पानी से तर कर सकता है, लेकिन पानी से गरारा नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा है हमारा दीन। फिर सहरी में ताखीर करना और ग़ुरूब आफ्ताब के बाद इफ्तार में जल्दी करना सुन्नत है। इफ्तार यानी रुतुब यानी तर खजूरों के ज़रिए किया जाए, और रुतुब यानी तर खजूरें ना मिलें तो तमर, तमर कहते हैं सूखी खजूरों के ज़रिए इफ्तार कर लिया जाए। तो बहरहाल यह है कि दोनों तरह की खजूरें जो हैं वो वाली इस ज़रिए में आती हैं, और अगर ये भी ना मिले तो पानी के ज़रिए, और अगर पानी भी ना मिले तो किसी भी हलाल खाने के ज़रिए इफ्तार कर लिया जाए, और अगर ये भी ना मिले तो किसी हलाल चीज़ के मिल जाने तक इफ्तार की नियत ही कर ले। सुभान अल्लाह, तो क्या पता चला, खजूर किसी भी किस्म की, इसको सहरी और इफ्तारी में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, वो ना मिले तो कुछ भी खाएं। अच्छा, हमारे यहाँ कहते हैं खजूर नहीं तो पानी, पानी नहीं तो नमक, अब क्या करें आप, नमक नहीं है तो, हैं, ऐसी बात नहीं। खजूर प्रेफरेंस पे रख लीजिए, बाकी चीज़ों को ऑप्शनल कर लीजिए, कुछ भी मिल जाए, है ही कुछ नहीं। कई दफ़ा ऐसा होता है मस्जिद में सीधा चले गए, खजूर नहीं है क्या करें, अक्सर आपके साथ जब रोज़े से मैं पूछती हूँ तो मस्जिद में खजूर थी कि नहीं, तो ना हो तो फिर नियत कर लीजिए कि मेरा रोज़ा अब खुल चुका है, इससे प्यारा कोई दीन हो सकता है। अल्लाह अकबर। फिर इसके बाद देखिए, रोज़ेदार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तौत, तौत क्या होती हैं, इतात, नेकियाँ इसके काम करना, और तमाम बुराइयों से बचना सुन्नते नबवी है, ठीक है। यानी नेकियों के काम कीजिए रोज़ा रख के, और बुराइयों से रुकिए। जी बिल्कुल, आप देखिए कि नेकियों के कामों में एक काम है ना, जब आपने इंशाल्लाह दौरे कुरान के लिए आना है, फिर इसके बाद रोज़ेदार पर फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी करना, नीज़ हराम कामों से बचना ज़रूरी है। चुनाचे पांचों नमाज़ों के इनके औकात में जमात के साथ अदा करना और झूठ गीबत नीज़ मामलात में धोखा देने से बचना और तमाम हराम कौलो फेल को तर्क करना लाजिम है। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतन फी अन यदा तआमुहू व शराबुहू, यानी जिसने झूठ बोलना और इस पर अमल करना नहीं छोड़ा तो अल्लाह को ज़रूरत नहीं कि ऐसा शख्स अपना खाना पीना छोड़ दे। क्या पता चला कि रोज़ा रख कर गलत चीज़ों से बचना भी रोज़ा है। ये रोज़े की खूबसूरती है। देखिए, सोमे रमज़ान जो बुक है ज़ादुल खैर कोर्स के अंदर है, जिनको उसका मौका नहीं मिल सका वो ज़रूर इस सीरी से फ़ायदा उठाएं। अब आप देखिए कि ये तो हमने मसाइल सारे सुन लिए, अल्हम्दुलिल्लाह इतना आसान है हमारा दीन। अब आप देखिए हमने इस दीन को कितना मुश्किल कर लिया, कितना बड़ा कर लिया, ये हम सब जानते हैं। असल बात यह है कि मैंने आपने इस चीज़ से अपने आप को महरूम नहीं करना। आप देखिए कि अगर मैं देखूँ तो सिर्फ 39 मिनट में हमने रमज़ान ए टू ज़ी जिसमें मसाइल हैं वो कर लिए। कितना आसान है दीन। अगर हम इसी तरह एक एक चीज़ को देखते जाएं, इस्लाम ए टू ज़ी, रोज़ा ए टू ज़ी, सलात ए टू ज़ी, कम अज़ कम फ़राइज़ को तो हम देख लें, हज ए टू ज़ी, तो हमारा दीन यकीन करें कि बहुत आसान दीन है। अब ये सारी बातें जो आपने मैंने सुन ली इस किताब के अंदर से अपने लिए ले ली, ये सब कुछ सुनने के बाद क्या फिर ये सब कुछ हो गया तो ख़त्म हो गया काम? नहीं। देखिए ये तो कुछ तफहीमी बातें थी जो सुन्नत के ज़रिए हमें फ़हम मिला है, ठीक है, फ़िकी बात नहीं कहती लग, क्योंकि हमारे यहाँ फ़िक का लफ्ज़ बड़ा ही गलत इस्तेमाल होता है। यानी ये कह लीजिए कि तफ़ीमो सुन्ना थी, ये हमने सुन्नत की रोशनी में रोज़े के मसाइल जान लिए। लेकिन अब एक सवाल ख़ुद से कीजिए, मैं अपने आप से करूँ, आप अपने आप से, हम आज यहाँ क्यों आए? हमारा यहाँ आकर बैठने का आज मकसद क्या है? इतनी एफर्ट, इतनी कोशिश, बाज़ दफ़ा एक लेक्चर के लिए इतना सफ़र, ये क्या है? आपको मुझे एक दूसरे को रग़बत दिलाने के लिए। जो लोगों को कोई भी स्टेशन सूट नहीं करेगा जाने का, अगर इन केस आप अपने घर से सुन रहे हैं तो फिर आप वीज़ा क्यू के थ्रू सुनिए, ताकि आपको ख़ुद भी एज अ स्टूडेंट फीलिंग आए। और माशाल्लाह दौरे कुरान की जो रजिस्ट्रेशन लिंक पे लोग साइन कर चुके हैं उनको तो 100% इस पे आना चाहिए, ताकि वो फिर फोकस्ड हों। देखिए कि बहुत सारी नेकियां, जैसे अब मैं मिसाल देती हूँ कि आज आप यहाँ आकर बैठे हैं ना, ये माहौल ना होता तो क्या आप इतने सुकून से ये बातें सुन सकते थे? और ये बातें चलते फिरते सुनने वाली नहीं होती, तो बहुत फ़ायदा उठाएं। अब एक चीज़ जो मेरे आपके लिए खुश आमदेद रमज़ान के नाते से, आप और मैं इस रमज़ान को किस दिल से वेलकम कह रहे हैं? क्या मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी में ये जो रमज़ान आ रहा है ये मुझे सोच पे माइल कर रहा है कि मैंने अपने आप को बदलना है? ये सोचने की बातें हैं। क्योंकि देखिए, जब तक मैं और आप हर हाल में और हर मौके पे नेकी नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी। बस जब हम कहते हैं कोई है तो ठीक है, कोई है नहीं, जैसे अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, आप इधर आ जाए तो फिर हम करेंगे, आप इधर नहीं आएंगी तो क्या? तो मैं एक जुमला पूछती हूँ आप सबसे भी, क्या आप में से किसी की हिदायत मेरे साथ जुड़ी हुई है? किसी के साथ नहीं जुड़ी हुई। याद रखिए कि अगर हिदायत इंसानों के साथ जुड़ी होती ना, तो नबी सल्लम हमेशा ज़िंदगी पाते, लंबी ज़िंदगी हमेशा की आपको मिलती। क्यों मिलती? क्योंकि आप ना रहे तो ख़त्म। अल हादी अल्लाह का नाम है। अल्लाह ताला अपने नबी को दुनिया में भेजता है, आपने एक उस्ताद होने के नाते, मुरब्बी होने के नाते तरबियत की, मुज़क्की होने के नाते तज़किया किया, उस्ताद होने के नाते इल्म दिया, आप एक लीडर थे, जर्नैल थे, आप एक ख़ास वक्त गुजार कर दुनिया से अल्लाह के हुक्म से चले गए और अल्लाह ताला ने उनको मेरे आपके लिए ज़रिया बनाया। लेकिन हम क्या नबी के होने पे अमल करेंगे? यानी आप कहते हैं कि हमें तो जी कोई है तो मज़ा आता है वरना नहीं आता। कोई हो और काम की बात कोई ना हो, और ना हो तो काम की बात हो जाए, क्या बेहतर है। तो याद रखिए, घर से सुने, जहाँ भी सुने, आप अपनी हिदायत के लिए सुनेंगे। याद रखिएगा, नबी सल्लम की ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या हो गया था कि जिसने इस बात के लिए सहाबा कराम को तैयार कर दिया था। देखिए, कोशिश तो दी बेस्ट की होती है, लेकिन वमा तशाउना इल्ला इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला जो चाहता है वही होता है, हम उसके हुक्म के ग़ुलाम हैं। यही है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। और बस दफ़ा अल्लाह ताला मुझे आपको उन हालात में डालकर ये सबक सिखाते हैं जो हमें जायनमाज़ पे खड़े होकर आज तक ना समझ आया कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन क्या होता है। जब आप कुछ चाहें, एक मौका ऐसा हुआ अल्लाह के नबी सल्लम ने कुछ काम चाहा, वो ना हुआ, कुछ और हो गया, तो आपने कहा एक हमारी चाहत थी और एक अल्लाह की चाहत थी, वो हुआ जो अल्लाह की चाहत थी। तो याद रखिए, मैं और आप उसके बड़े कमज़ोर आजिज़ बंदे हैं। हम उसके नाम पे काम करते हैं, उसके नाम पे नियतें करते हैं, इरादे बांधते हैं, सफ़र करते हैं, प्लान करते हैं, फिर पहुंचते हैं, फिर वहां से उठते हैं, फिर आगे चले जाते हैं। अल्लाह के नबी ने जो मौका था आपकी ज़िंदगी में हिजरत का, तो उस वक्त जब मदीना में हर घर मुंतज़िर था कि आपकी नाका, आपकी ऊँटनी वहाँ रुके जहाँ अल्लाह के नबी के कदम पड़े और हम उनके मेज़बान बने। याद होगा आपको वाक़या, अगर कभी आपने सीरत सुनी है, सीरत का सफ़र तय किया है, हर घर मुंतज़िर था कि अल्लाह के नबी हमारे मेहमान हो, हमें मेज़बान बनने दें। आपने कहा कि मेरी नाका अल्लाह के हुक्म की मुंतज़िर है, जब अल्लाह ताला चाहेंगे जहाँ चाहेंगे इसको चलाएंगे, वहाँ जहाँ चाहेंगे इसको रोक लेंगे। तो वही हुआ, अल्लाह के नबी की ऊँटनी जहाँ रुकी, रुक के उठ गई, वहाँ मस्जिद नबी बन गई, यानी वहाँ अल्लाह का घर बन गया। और अबू अय्यूब अल अंसारी के घर से गुज़र चुकी थी और वापस जा के वहाँ बैठ गई, तो वहाँ वो अल्लाह के नबी के मेज़बान बन गए। क्या पता चला, ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म पे हैं। तो आपकी मेरी ऊँटनियाँ वहीं रुकती, तब रुकती जब अल्लाह चाहता है, जो भी चीज़ है। और याद रखिए, बास दफ़ा हम कोई नेकी करके वो फ़ायदा नहीं उठा पाते जो ना करके उसको तस्लीम करके, तस्लीम और रज़ा इसी का नाम है, सब्र शुक्र इसी का नाम है, रदी तो बिल्लाह रब्बन इसी का नाम है। तो ये रमज़ान आपको मुझे ये सिखाने आ रहा है, मग़रिब से 1 मिनट पहले जान के खोल लिया तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर आपने फजर के ख़त्म होने के 1 मिनट बाद तक खाते रहे तो रोज़ा टूट जाएगा, होगा ही नहीं। तो ये मर्जियां तोड़ने का महीना है। आपने, मैंने इंशाल्लाह इस साल बहुत एक्टिविटीज़ करनी है, वो बहुत कुछ है। मैं आपको सच बताऊं अंदर की बात, जितने जोश व खरोश से अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल कुरान के प्लेटफॉर्म पे दौरे कुरान की तैयारियां होती हैं, हर साल होती हैं, कोई इस साल पहली दफ़ा नहीं हो रही, ये अलग बात है कि वक्त के साथ साथ एक तो प्लेटफॉर्म बढ़ते जा रहे हैं, टेक्निकल चीज़ें आगे आती जा रही हैं, प्लस प्यारे मोहब्बत करने वाले अल्लाह के नाम पर अंसारुल्लाह बनने वाले साथियों के ईमान, तकवा और नेकियों के हरीस बनने में भी जोश आ रहा है। तो माशाल्लाह ऐसी तैयारियां हैं कि मैं अक्सर एक जुमला बोलती हूँ अपने घर में कि 10 शादियों की तैयारियाँ छोटी और एक दौरे कुरान की तैयारी बड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना वक्रिमना वला तुहिन्ना वातिना वला तहरिमना वासिरना वला तुसिर अलैना वर्दिना वरदाना, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। ट्रैवलिंग में बहुत सारे लोग मिलते हैं, ग्रुप्स में मैसेजेस लोग भेजते हैं, कई लोग कहते हैं हम बहुत सारी क्लासेस करते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म्स पे हैं, लेकिन दौरे कुरान हम आपके साथ करते हैं। भाई क्यों? इसलिए कि आपका थीम फ़र्क होता है, आप हमें हर साल एक नई सोच देती हैं, तर्जमा तो वही है जो है। तो यकीन करें मेरा सर सजदों में चला जाता है कि अल्लाह, दौरे कुरान तो चाबी है दिल को खोलने की, इस चाबी से कोई दिल खोल दे, उसके बाद जिस जगह से भी हक बात सुने, जिसकी बात सुनेगा, इंशाल्लाह उसमें हिस्सा डलेगा, सदका जारिया होगा। तो अल्लाह ताला आपको मुझे इस सारे वक्त का बेहतरीन फ़ायदा उठाने वाला बना दे। ये चंद बातें थी, इनको जज्ब कीजिए और अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो जाए। हमारे सारे साथी जो गार्ड बनकर इस सारे सफ़र में मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्रों में, सेहतों में बरकत दे, तकवा में और ईमान में बरकत दे, और जो घरों से बैठे इसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। और मैं आज सब के लिए दुआ करूँगी जो दौरे कुरान के सारे सफ़र में इसको लोगों तक, जंगलों में, गलियों में, देहातों में और बड़े बड़े शहरों में पहुँचाने में हिस्सेदार हैं। अल्लाह ताला ये काम उनको ज़िंदगी के आखिरी दिन तक उनसे ले, और उनके बाद उनकी नस्लें, उनके बच्चे और उनके घर वाले ये काम करते रहें। आप भी मुझे ये दुआ दे दीजिए। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।